15 आख्यान समीक्षा। वैदिक आख्यान वस्तुतः ऐतिहासिक व्यक्तियों पर निर्भर न होकर प्राकृतिक पदार्थों आदि पर आश्रित है। इनमें कहीं सूर्य और बादलों का युद्ध, कहीं बादलों में विद्युत का प्रकाश, कहीं पाप पुण्य का द्वंद, कहीं सूर्य चंद्र एवं नक्षत्रों का वर्णन, कहीं अमूर्त भावों का मूर्त रूप में वर्णन, कहीं दिन रात का भाई बहन या पति पत्नी के रूप में वर्णन, कहीं उषा और सूर्य, सूर्य की किरण का सूर्य की पुत्री के रूप में वर्णन है। उपर्युक्त आख्यानों के गूढ़ार्थ को स्पष्ट करने के लिए कतिपय संकेत नीचे दिए जा रहे हैं। 1. विष्णु के तीन पैर। विष्णु शब्द सूर्य के लिए है। वैवेष्टि व्याप्नोति इति विष्णु, जो सर्वत्र व्याप्त है उसे विष्णु कहते हैं। तीनों लोकों अर्थात द्युलोक, अंतरिक्ष और भूमि में व्याप्त होने से विष्णु सूर्य को त्रिविक्रम या त्रिपाद कहा जाता है। सूर्य प्रातः, मध्यान्ह और सायन रूपी तीन पगों से सारे संसार को नाप लेता है। इसका ही ऋग्वेद में वर्णन है। अतएव उसे तीनों लोकों का निर्माता, तीनों लोकों का धर्ता और गो का धाम कहा गया है। यह पार्थिवानी विममे रजांसि विचक्रमाण स्त्रेधो धोरुगाय एको दाधार भुवनानि विश्वा यत्र गावो भूरि श्रृंगा अयासः। 2. पुरुर्वा उर्वशी। इस संवाद के अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है। पुरुर्वा सूर्य हैं और उर्वशी उषा उसकी प्रेयसी हैं। सूर्य के प्रकट होने पर उषा लुप्त हो जाती हैं। प्रोफेसर गेल्डनर, प्रोफेसर रोट, गोल्डस्टूकर आदि इस मत के समर्थक हैं। प्रोफेसर ग्रिफिथ ने अपने पद्यानुवाद के नोट्स में प्रोफेसर मैक्स मुलर और गोल्डस्टूकर का मंतव्य इस प्रकार उद्धृत किया है। मैक्स मुलर कंसीडर द स्टोरी टू बी वन ऑफ द वेदास विच एक्सप्रेसेस द कोरिलेशन ऑफ द डॉन एंड द सन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर गोल्डस्टूकर। उर्वशी इज द मॉर्निंग मिस्ट विच वैनिसेस अवे एज सून ए पुरुर्वाज द सन डिस्प्लेज हिमसेल्फ। इस कथानक की अधिक उपयुक्त व्याख्या यह होगी कि पुरुर्वा मेघ है, पुरु अधिक रवस शब्द करने वाला, उर्वशी विद्युत है, उरु अधिक अशि व्याप्त, दोनों के संयोग से आयु अन्न दीर्घायु का प्रदाता का जन्म होता है। यजुर्वेद में उर्वशी को अप्सरा बताते हुए उसे विद्युत बताया गया है। ऋग्वेद में भी उर्वशी के विद्युत होने का निर्देश है कि यह जलीय विद्युत है। ऋग्वेद में ही उर्वशी को दीर्घ आयु का दाता भी कहा गया है। मेघों के जल में बिजली विचरण करती है, अतः बिजली को अप्सरा कोष्ठक में अप जल में सरस विचरण करने वाली कहते हैं। अति रूपवती को भी अप्सरा कोष्ठक अप्स सुंदर रूप रा वाली कोष्ठक बंद कहते हैं। वर्षा काल के बाद उर्वशी विद्युत पुरुर्वा मेघ को छोड़कर चली जाती है, कोष्ठक लुप्त हो जाती है, कोष्ठक बंद। इसका ही यह आलंकारिक वर्णन है। पुरुर्वा उर्वशी के संयोग से वर्षा होती है और उससे आयु प्रदाता अन्न की उत्पत्ति होती है। यह है पुत्र आयु का जन्म। 3. यम यमी। यम दिन है, कोष्ठक में यम अर्थात समय का नियामक, कोष्ठक बंद। यमी रात्रि है, समय की नियामिका। यम यमी परस्पर भाई बहन के तुल्य हैं। प्रातः उषा के और सायं संध्या के व्यवधान के कारण ये कभी मिल नहीं पाते हैं। इस सूक्त के द्वारा शिक्षा दी गई है कि भाई बहन का वैवाहिक संबंध सर्वथा वर्जित है। 4. सोम सूर्या विवाह। सोम अर्थात चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है, अतः वह सूर्या सूर्य की किरण सूर्य की पुत्री से विवाह करता है। चंद्रमा सूर्य की सुषुम्न किरण से प्रकाशित होता है। यजुर्वेद और निरुक्त में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि सूर्य की सुषुम्न किरण चंद्रमा को प्रकाश देती है। इसका ही इस सूक्त में आलंकारिक वर्णन है। सूर्य की पुत्री सोम की पत्नी है और वह उसे प्रकाशित करती है। इस सूक्त में सर्वप्रथम विवाह संस्कार का वर्णन मिलता है। 5. इंद्र और वित्र। इंद्र सूर्य है और आवरणकर्ता होने के कारण मेघ वित्र है, वृत्र है। वर्षा काल में दोनों का सदा युद्ध होता रहता है। कभी बादलों को हटाकर सूर्य दिखाई देता है और कभी बादल उसे घेरे रहते हैं। यह है इंद्र और वित्र का युद्ध। इस युद्ध में अंत में इंद्र की विजय होती है और वित्र का नाश होता है। वृत्र वध अर्थात बादलों के फटने से वर्षा होती है और नदियां बह निकलती हैं। वेदों में सर्वत्र वित्र से नदियों के बहने का उल्लेख है। किसी राक्षस के वध से नदियों का बहना असंभव है। इसी प्रकार अन्य आख्यानों का गूढ़ार्थ ज्ञातव्य है। 16 वैदिक खिल सूक्तों की समीक्षा। खिल सूक्त प्रोफेसर जी ब्यूलर ने सर्वप्रथम खिल सूक्तों का संकलन ऋग्वेद की एक प्राचीन काश्मीरी पांडुलिपि से किया था। ये सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल के बाद क्रम से संग्रहित थे। समस्त खिल सूक्त अध्यायों में विभक्त हैं। यजुर्वेद के तुले इनकी क्रम व्यवस्था है। प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में ऋषि देवता और छंदों की सूचक अनुक्रमणी है। सूक्त के अंत में ऋग्वेद के मंत्रों का प्रतीक भी दिया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि ऋग्वेद में उनका स्थान कहाँ पर है। खिल सूक्तों की संख्या। मैक्स मूलर के संस्करण में 32 तथा आउफ्रैक्ट के संस्करण में 25 खिल सूक्त हैं। श्री शातवलेकर के ऋग्वेद संहिता के संस्करण में 36 खिल सूक्त हैं। प्रोफेसर रोड की प्रेरणा से डॉक्टर सेफ्टे लोविट्स ने एक खिल सूक्त संग्रह 1906 ईस्वी में ब्रेसलार्ड से निकाला। तदनंतर पूना से प्रकाशित सायण भाष्य सहित ऋग्वेद के संस्करण के चतुर्भाग के अंत में श्री चिंतामणि गणेश काशीकर ने खिल सूक्तों पर विस्तृत विचार किया और 5 अध्यायों में 86 खिल सूक्तों का पाठ वेद आदि के साथ संकलन किया है। साथ ही यह भी संकेत किया है कि ऋग्वेद में ये कहाँ पढ़ने हैं। श्री काशीकर द्वारा संकलित खिल सूक्तों का संक्षिप्त विवरण यह है। अध्याय सूक्त मंत्र संख्या विशिष्ट सूक्त। अध्याय 1 सूक्त संख्या 12 मंत्र संख्या 86 सौपर्ण सूक्त 11 सूक्त 84 मंत्र 2 16 66 प्लस 70 अन्य श्री सूक्त 19 प्लस 21 40 मंत्र 3 22 137 प्लस 25 अन्य बालखिल्य 8 सूक्त 66 मंत्र 4 14 105 प्लस 60 अन्य शिव संकल्प 28 मंत्र 5 22 370 प्लस 9 अन्य निविद 193 प्रयास 64 कुंताप 80 मंत्र योग 86 सूक्त 929 मंत्र संख्या खिल का या अभिप्राय। खिल का वस्तुतः अभिप्राय है परिशिष्ट या प्रक्षिप्त जो अंश या मंत्र मूल ग्रंथ में न हो और आवश्यकता अनुसार अन्यत्र से संग्रह किया गया हो उसे खिल कहते हैं। महाभारत के प्रसिद्ध टीकाकार नीलकंठ का भी यही मत है। एक वेद की पर शाखा से किसी अपेक्षा से जो अंश ग्रहण किया जाता है वह खिल कहा जाता है। जैसे महाभारत में हरिवंश पर्व खिल प्रक्षिप्त है एवं यत पुराणांतरस्थम आकांक्षा वशात पठ्यते तत्खिलम हरिवंशाख्यम इति महाभारत आदि पर्व 282 पर टीका। ऋग्वेद की शाकल शाखा में बाष्कल शाखा से कुछ अतिरिक्त मंत्र संग्रहित हैं। अधिकांश वे ही मंत्र खिल सूक्तों में हैं। इस प्रकार यजुर्वेद आदि में भी अन्य शाखाओं में संग्रहित मंत्र खिल कहे जाते हैं। 7 विशिष्ट खिल सूक्त। 1 सौपर्ण सूक्त अध्याय 1 से 2 से 12 तक। अध्याय 1 के 2 से 12 तक 11 सूक्त सौपर्ण सूक्त कहे जाते हैं। इन सूक्तों के दृष्टा ताक्ष्य सुपर्ण ऋषि हैं, अतः इन्हें सौपर्ण कहते हैं। 11 सूक्तों में से जो 10 सूक्तों में अश्विनी देवों की स्तुति है इसे सुपर्णाध्याय भी कहते हैं। 2 श्री सूक्त कई स्रोत सूक्तों अग्नि सूक्त अग्निपुराण आदि में इसका उल्लेख है। लक्ष्मी तंत्रम के 50वें अध्याय में इसका विस्तृत विवेचन हुआ है। लक्ष्मी पूजा के प्रसंग में इस सूक्त का पाठ होता है। 3 बालखिल्य सूक्त अध्याय 3 के 1 से 8 सूक्त ऋग्वेद में मंडल 8 के 49 से 59 सूक्त 11 सूक्त 80 मंत्र। खिल सूक्तों में ऋग्वेद के 11 बालखिल्य सूक्तों में से केवल प्रारंभ के 8 सूक्त ही संग्रहित हैं। अंत के 3 सूक्त 14 मंत्र नहीं हैं। इनके ऋषि कर्णवंशी प्रस कर्ण पुष्टिगु सृष्टिगु आयु मेध्य मातरिश्वा कृष और पृषघ्र हैं। सभी कण्ववंशी हैं। इनमें अधिकांश मंत्रों का देवता इंद्र है। बालखिल्य ऋषियों को बृहद देवता में तिग्म तेजसाम अत्यंत तेजस्वी कहा गया है। इन सूक्तों में स्वर आदि का निर्देश व्यवस्थित है। 4 पौमानी सूक्त 3:10 यह सूक्त पौमान सोम से संबद्ध है। सभी प्रकार के रोग शोक कष्ट आदि से मुक्ति के लिए इस सूक्त का पाठ निर्दिष्ट है। 5 ब्रह्म सूक्त इस सूक्त के 10 मंत्रों में ब्रह्म और सूर्य का महत्व वर्णित है। छह रात्रि सूक्त, इस सूक्त के चार मंत्रों में रात्रि का महत्व वर्णित है। सात कृत्या सूक्त, इस सूक्त के 40 मंत्रों में विविध अभिचार कृतियों का वर्णन है। आठ शिव संकल्प सूक्त, इस सूक्त के 28 मंत्रों में मन की शुद्धि की प्रार्थना की गई है। इसके प्रारंभिक छह मंत्र यजुर्वेद के अध्याय 24 के प्रारंभ में दिए हैं। नौ संज्ञान सूक्त, इस सूक्त के 5 मंत्रों में सामनस्य एकता और संगठन की प्रार्थना है। दस महानामनी सूक्त, इस सूक्त के 11 मंत्रों में धनादि के लिए इंद्र की स्तुति है। शाकवरी व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत के लिए इन मंत्रों का पाठ किया जाता है। 11 निविद अध्याय, निविद मंत्र वैदिक गद्य के प्राचीनतम रूप हैं। इनका संबंध निवेदयामी निवेदन नैवेद्य से है। ये मंत्र अग्नि, सविता, इंद्र, विश्वदेव, ऋभु, मरुद्गण आदि देवों की प्रार्थना से संबद्ध हैं। 12 प्रैस अध्याय, प्रैस अध्याय में अग्नि, सोम, ईड़ा, सरस्वती, भारती, इंद्र आदि देवों की कल्याणार्थ प्रार्थना है। प्रैष सामूहिक प्रार्थना के मंत्र हैं। 13 कुंताप सूक्त, अथर्वेद में खिल सूक्तों के रूप में कुंताप सूक्तों का उल्लेख है। ये कांड 20 के 127 से 137 सूक्त अर्थात 10 सूक्त हैं। इनमें परीक्षित के राज्य प्रशासन की प्रशंसा, सभ्य असभ्य के कुछ लक्षण, पशु पक्षी, मुद्रा, वृक्ष, वाद्यों आदि का उल्लेख है।